नमस्कार। आज हम गणित की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं, खास तौर पर चैप्टर 5 यानी स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स पर। नाम तो स्कूल वाला लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट्स बड़े काम के हैं, सिर्फ इम्तिहानों के लिए ही नहीं। तो आज का हमारा मिशन है इस अध्याय के जो जरूरी हिस्से हैं उनको समझना, उनको खंगालना और देखना कि इसमें क्या खास है। कोशिश रहेगी कि सब कुछ एकदम साफ और सरल भाषा में हो।
बिल्कुल, हम शुरुआत करेंगे स्क्वायर से, फिर समझेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बला है, उनकी कुछ दिलचस्प प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर चलेंगे स्क्वायर रूट की तरफ। उसे निकालने के अलग अलग तरीके क्या हैं इस पर भी बात करेंगे, और हाँ, कुछ मजेदार पैटर्न्स और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जिक्र भी आएगा।
बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, स्क्वायर क्या होता है। मेरे ख्याल से ये तो आसान है, किसी भी नंबर को उसी से गुणा कर देना, है ना? जैसे 4 का स्क्वायर हुआ 4 × 4 = 16।
एकदम सही। और जब हम किसी नेचुरल नंबर को उसी से गुणा करते हैं और नतीजा भी एक नेचुरल नंबर आता है, तो उस नतीजे को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है।
अच्छा,
वैसे ही 9 जो 3 का स्क्वायर है या 25 जो 5 का स्क्वायर है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो कैसे पहचाने कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं?
हाँ, ये मुश्किल हो सकता है।
यहीं पर प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। अगर सभी फैक्टर्स के पूरे पूरे जोड़े मतलब पेयर्स बन जाते हैं, कोई भी फैक्टर अकेला नहीं बचता, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है।
अच्छा, मतलब जैसे हम किसी चीज के टुकड़े करें और हर टुकड़ा जोड़ी में मिले, ऐसा कुछ?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकती हैं। जैसे 784 को लें, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। यहाँ देखिए, 2 के 2 जोड़े बने और 7 का 1 जोड़ा बना। कोई भी फैक्टर अकेला नहीं रहा, इसलिए 784 एक परफेक्ट स्क्वायर है।
और ये किसका स्क्वायर है ये भी पता चल जाता है।
हाँ, हर जोड़े में से एक नंबर ले लें, 1-2 इस जोड़े से, 1-2 दूसरे जोड़े से और 1-7 तीसरे से, तो 2 × 2 × 7 = 28, मतलब 784 28 का स्क्वायर है।
और अगर कोई फैक्टर अकेला रह जाए, जैसे आपने वो उदाहरण दिया था 3675 का, उसके फैक्टर्स थे 3 × 5 × 5 × 7 × 7, यहाँ 5 का जोड़ा है, 7 का भी है, लेकिन 3, वो बेचारा अकेला रह गया।
बिल्कुल, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 3675 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तरीका काफी, आप कह सकती हैं, भरोसेमंद है।
ये तो हुई पहचानने की बात, लेकिन क्या परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ अपनी पहचान, कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनसे उन्हें शायद दूर से ही पहचाना जा सके?
हाँ, कुछ दिलचस्प प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं। पहली बात, कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 पर ख़त्म होता है, मतलब उसका आखिरी अंक इनमें से कोई है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता।
सच में?
हाँ, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा के देख लीजिए, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इनके आखिर में कभी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा।
अरे हाँ, ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। मतलब अगर नंबर के आखिर में इनमें से कोई अंक दिखे, तो बिना फैक्टराइजेशन किए ही कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कमाल है।
सही पकड़ा। और एक और पहचान है जीरोस को लेकर।
अच्छा,
अगर किसी नंबर के आखिर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, मतलब 1 शून्य या 3 शून्य या 5 शून्य,
जैसे 10 या 1000,
हाँ, तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होंगे,
जैसे 100 में 2, 400 में 2 या 90,000 में 4।
बिल्कुल,
ये तो काफी काम की पहचान है। और इवन ऑड का भी कुछ चक्कर है शायद?
हाँ, वो तो सीधा सा है, इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा इवन होते हैं, जैसे 6² = 36।
ठीक है।
और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा ऑड होते हैं, जैसे 9² = 81। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं।
एक और दिलचस्प प्रॉपर्टी जो मुझे याद आ रही है वो है लगातार ऑड नंबर्स को जोड़ने वाली। बताया गया है कि पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का जोड़ हमेशा n स्क्वायर होता है। जैसे पहला ऑड नंबर 1 है जो 1 स्क्वायर हुआ, पहले 2 ऑड नंबर्स मतलब 1 + 3 का जोड़ 4 है जो 2 स्क्वायर हुआ, पहले 3 1 + 3 + 5 का जोड़ 9 है जो 3 स्क्वायर हुआ। ये तो कमाल का पैटर्न है।
बिल्कुल, ये गणित की खूबसूरती दिखाता है कि कैसे साधारण जोड़ का नतीजा एक स्क्वायर नंबर निकल आता है।
और वो भी तो है, कोई भी दो लगातार नंबर ले लें, जैसे n और n प्लस 1, तो उनके स्क्वायर्स के बीच का अंतर डिफरेंस हमेशा 2n प्लस 1 होता है। जैसे 4 स्क्वायर यानी 16 और 5 स्क्वायर यानी 25 का अंतर 9 है, और 2 इंटू 4 जमा 1 भी 9 ही होता है। ये कहाँ काम आ सकता है?
ये पैटर्न समझने में मदद करता है कि स्क्वायर नंबर्स कितनी तेजी से बढ़ते हैं। आप देख सकती हैं कि दो लगातार स्क्वायर्स के बीच का गैप खुद भी बढ़ता जाता है।
अच्छा, अब पैटर्न्स की बात चली है तो इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे ये कि दो लगातार स्क्वायर नंबर्स, मान लीजिए एन स्क्वायर और एन प्लस वन स्क्वायर, के बीच हमेशा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं।
हाँ,
जैसे 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16 के बीच में 2 × 3 यानी 6 नंबर हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
और कुछ और भी मजेदार पैटर्न्स हैं।
हाँ,
एक ये कि किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को दो लगातार नेचुरल नंबर्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं।
अच्छा,
कैसे?
जैसे 7² = 49 है, इसे 24 + 25 लिख सकते हैं।
अरे वाह!
और ये 24 और 25 कैसे मिले?
इसके लिए फॉर्मूला है n² - 1/2 और n² + 1/2। यहाँ n = 7 था।
समझ गई। और एक और पैटर्न है दो लगातार इवन या ऑड नंबर्स के गुणा को लेकर।
हाँ,
जैसे 10 और 12 को गुणा करें तो 120 आता है।
हाँ,
जो उनके बीच वाले नंबर यानी 11 के स्क्वायर 121 से एक कम है।
हाँ, ये तो वो a - 1 a + 1 = a² - 1 वाला फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है।
बिल्कुल। और मेरा सबसे पसंदीदा पैटर्न तो वो अंकों वाला है, 1² = 1, 11² = 121, 111² = 123, 21, 111² = 1234321। ये तो जैसे कोई पहाड़ बन रहा हो। गणित वाकई खूबसूरत हो सकता है।
ये पैटर्न्स हमें संख्याओं के बीच छिपे रिश्तों को दिखाते हैं। और इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? हाँ, सुना है।
ये 3 नेचुरल नंबर्स का ऐसा समूह होता है, मान लीजिए ए बी सी, जहाँ पहले 2 के स्क्वायर्स का जोड़ 3रे के स्क्वायर के बराबर हो, मतलब a² + b² = c².
सबसे मशहूर वाला तो वो है 3, 4, 5।
हाँ, क्योंकि 3² (9) + 4² (16) = 25, जो कि 5² है।
हाँ, ये तो स्कूलों में राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के साथ पढ़ाते हैं, साइड्स होती हैं ये।
बिल्कुल, ज्योमेट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है। और मजे की बात ये है कि हम ऐसे ट्रिपलेट्स बना भी सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर m जो 1 से बड़ा हो, उसके लिए 2m (m²-1) (m²+1) हमेशा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है।
अच्छा, मतलब m की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी रखें तो ट्रिपलेट मिल जाएगा, जैसे अगर m = 3 रखें तो।
तो ट्रिपलेट बनेगा 2m (3²-1) (3²+1), यानी 6, 8, 10।
चेक करते हैं, 6² = 36, 8² = 64, 36 + 64 = 100,
और 10² भी 100 होता है।
अरे वाह, ये काम करता है।
हाँ, और अगर हमें ट्रिपलेट का एक मेंबर पता हो तो हम बाकी ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा मेंबर 8 है,
ठीक है,
तो हम 2m = 8 मानकर m = 4 निकाल सकते हैं। फिर ट्रिपलेट होगा 8 (4²-1) (4²+1), यानी 8, 15, 17।
ये तो वाकई काम की चीज है, खासकर ज्योमेट्री की समस्याओं को हल करने के लिए। अच्छा, अब तक हमने स्क्वायर्स और उनकी प्रॉपर्टीज की बात की, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, खासकर 2 अंकों वाले नंबर का, तो क्या कोई तेज तरीका है? वो गुणा करने में कभी कभी टाइम लग जाता है।
हाँ, एक तरीका है जो a + b² = a² + 2ab + b² वाली आइडेंटिटी पर आधारित है।
ओह, वो एल्जेब्रा वाली आइडेंटिटी।
हाँ, मान लीजिए हमें 47 स्क्वायर निकालना है। यहाँ a = 4 और b = 7 मान सकते हैं। इसे कॉलम्स में कर सकते हैं, थोड़ा आसान रहता है। कॉलम 1 में a² (4² = 16), कॉलम 2 में 2ab (2×4×7) = 56, और कॉलम 3 में b² (7² = 49।
ठीक है, 3 वैल्यू आ गई, 16, 56, 49। अब इनका क्या करना है?
अब देखिए, कॉलम 3 49 का आखिरी अंक क्या है? 9। उसे लिख लीजिए।
ठीक, 9 लिख लिया।
बचा हुआ अंक क्या है? 4। उसे कॉलम 2 56 में जोड़ दीजिए। 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60।
60 हो गया।
अब इस 60 का आखिरी अंक क्या है? 0। उसे 9 के पहले लिख लीजिए।
ठीक, तो अब हो गया 09।
बचा हुआ अंक क्या है? 6। उसे कॉलम 1 16 में जोड़ दीजिए। 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22।
22।
अब ये 22 पूरा का पूरा 09 के पहले लिख लीजिए, तो नंबर बन गया 2209। यही 47 स्क्वायर है।
अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। थोड़ी प्रैक्टिस से ये तेज हो सकता है। चलिए, ये तो हुई स्क्वायर निकालने की बात। अब पहेली को उल्टा करते हैं। अगर हमें स्क्वायर पता हो और वो ओरिजिनल नंबर ढूंढना हो जिसका ये स्क्वायर है, यहीं पर स्क्वायर रूट आता है ना?
बिल्कुल, स्क्वायर रूट स्क्वायर करने का ठीक उल्टा ऑपरेशन है। अगर हम कहते हैं 5² = 25, तो इसका मतलब है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 है। यानी स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसे खुद से गुणा करने पर हमें दिया गया नंबर मिलता है। इसे हम रूट चिन्ह से दिखाते हैं, तो रूट 25 इज इक्वल टू 5।
एक सवाल है, क्या किसी नंबर के एक से ज्यादा स्क्वायर रूट हो सकते हैं? जैसे -5 × -5 भी तो 25 होता है।
सही सवाल है। टेक्निकली हर पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे रूट 25 असल में +5 और -5 दोनों हैं।
अच्छा।
लेकिन जब हम सिर्फ रूट चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, तो आमतौर पर हमारा मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट से होता है। इसे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं।
मतलब जब तक कहा ना जाए, हम पॉजिटिव वाला ही मानेंगे।
हाँ, जब तक खास तौर पर नेगेटिव रूट की बात ना हो, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं।
समझ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं?
इसके कई तरीके हैं जो नंबर के साइज और प्रकार पर निर्भर करते हैं। पहला और सबसे सरल लगने वाला तरीका है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का।
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये कैसे काम करता है?
ये उसी प्रॉपर्टी पर आधारित है जो हमने देखी थी कि पहले n ऑड नंबर्स का जोड़ n स्क्वायर होता है।
ओह अच्छा, तो इसमें हम ऑड नंबर्स घटाते जाते हैं?
हाँ, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से लगातार ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 घटाते जाइए जब तक कि नतीजा 0 ना आ जाए। आपने जितनी बार घटाया वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा।
उदाहरण के लिए रूट 81 निकालना हो
तो 81 में से पहले 1 घटाया बचा 80, फिर 3 घटाया बचा 77, फिर 5 बचा 72, ऐसे करते करते आखिर में 17 घटाएंगे तो 0 बचेगा।
गिनना पड़ेगा कितनी बार घटाया। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये तो 9 बार हुआ।
बिल्कुल, इसलिए रूट 81 इज इक्वल टू 9।
ये दिलचस्प है, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा हो जैसे रूट 1764, तब तो घटाते घटाते सुबह हो जाएगी।
हाँ 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 हाँ, ये तरीका छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए तो ठीक है, पर बड़े नंबर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। उसके लिए दूसरा ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अच्छा, वो जोड़े बनाने वाला।
हाँ, ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसका जिक्र हमने परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए किया था।
ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं?
पहला कदम, नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालो। जैसे रूट 1764 निकालना है तो फैक्टर्स हुए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। दूसरा कदम, एक जैसे फैक्टर्स के पेयर्स बनाओ, 2 2 3 3 7 7। तीसरा कदम, हर पेयर में से सिर्फ एक फैक्टर चुनो, यहां से 2, यहां से 3 और यहां से 7। चौथा कदम, इन चुने हुए फैक्टर्स को गुणा कर दो, 2 × 3 × 7 इज इक्वल टू 42। तो रूट 1764 इज इक्वल टू 42।
ये तरीका ज्यादा काम के लगता है, मतलब प्रैक्टिकल है। और क्या ये तब भी काम आता है जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे वो 1125 वाला उदाहरण था?
हाँ, ये इसका एक बहुत उपयोगी इस्तेमाल है। पता करना हो कि किसी नंबर को किससे गुणा या भाग करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
हाँ हाँ,
1125 के फैक्टर्स थे 3 × 3 × 5 × 5 × 5। यहाँ 3 का पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, लेकिन एक 5 अकेला रह गया। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसे एक और 5 की जरूरत है, तो हमें इसे 5 से गुणा करना होगा।
गुणा करके मिलेगा 5625, जो कि 75 का स्क्वायर होता है।
सही। और इसी तरह अगर पूछा जाए कि किससे भाग दे, तो जो फैक्टर अकेला है उसी से भाग देना होता है। यहाँ 5 से भाग देने पर 225 मिलेगा, जो 15 का स्क्वायर है।
ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये तरीका हमेशा काम करता है? मान लीजिए नंबर बहुत ही बड़ा हो जिसके प्राइम फैक्टर्स निकालना ही मुश्किल हो, या फिर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना और हमें उसका अनुमानित स्क्वायर रूट चाहिए हो, जैसे √10।
सबसे शक्तिशाली तरीका है लॉन्ग डिविजन मेथड।
ओह, लॉन्ग डिविजन। स्कूल में ये मुझे हमेशा थोड़ा डरावना लगता था।
हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा लंबा लग सकता है, पर एक बार इसका लॉजिक समझ आ जाए तो ये बहुत भरोसेमंद है।
अच्छा,
क्या हम इसके मुख्य स्टेप्स को समझने की कोशिश करें बिना किसी बड़े उदाहरण की हर कैलकुलेशन में उलझे? शायद लॉजिक समझ आ जाए।
हाँ, ये बेहतर रहेगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे?
देखिए, इसमें हम नंबर को दाईं ओर से दो दो अंकों के जोड़ों यानी पेयर्स में बांटते हैं।
ठीक है।
फिर सबसे बाईं ओर वाले जोड़े या अगर अकेला अंक बचा तो उससे शुरुआत करते हैं। हम ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर उस पहले जोड़े से कम या बराबर हो। ये नंबर हमारे कोशेंट यानी स्क्वायर रूट का पहला अंक बनता है और हमारा पहला डिवाइजर भी। फिर हम घटाते हैं, अगला जोड़ा नीचे लाते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। कोशेंट को डबल करते हैं और उसके आगे एक नया अंक, मान लीजिए एक्स, ऐसा लगाते हैं कि बनने वाले डिवाइजर को उसी अंक एक्स से गुणा करने पर वो नीचे लाए गए नंबर से कम या बराबर हो।
अच्छा,
ये अंक एक्स हमारे कोशेंट का अगला अंक बनता है और ये प्रक्रिया दोहराते जाते हैं जब तक सारे जोड़े खत्म न हो जाए।
सुनने में तो अब भी थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन आइडिया मिल रहा है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें अनुमान लगाना और गुणा करके देखना शामिल है।
बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, दशमलव वाले नंबर्स का भी। साथ ही ये भी बताता है कि किसी दिए गए नंबर में से कम क्या घटाएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
वो कैसे?
जो आखिर में रिमाइंडर बचता है वही घटाना होता है।
अच्छा,
और ये भी पता कर सकते हैं कि क्या जोड़ें कि वो अगला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसके लिए थोड़ा आगे सोचना पड़ता है।
अच्छा, मतलब लॉन्ग डिविजन सिर्फ रूट निकालने के लिए नहीं, बल्कि नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना है ये जानने में भी मदद करता है।
सही, जैसे अगर हमें 2361 का रूट निकालना है लॉन्ग डिविजन से, तो पता चलेगा कि 48 स्क्वायर इक्वल्स टू 2304 होता है और 57 शेष बचता है।
तो मतलब 2361 में से 57 घटा दें तो 2304 मिलेगा, जो 48 का स्क्वायर है।
बिल्कुल।
और अगर नंबर में डेसिमल हो तो, जैसे 12.4609 का स्क्वायर रूट निकालना हो?
लॉन्ग डिविजन मेथड यहाँ भी काम करता है, बस दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, डेसिमल पॉइंट के बाईं ओर इंटीग्रल पार्ट के जोड़े दाईं से बाईं ओर बनते हैं, जैसे हमेशा बनते हैं 12। दूसरा, डेसिमल पॉइंट के दाईं ओर डेसिमल पार्ट के जोड़े बाईं से दाईं ओर बनते हैं 0.4609।
अच्छा, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है डेसिमल के बाद।
हाँ, और अगर डेसिमल पार्ट में अंकों की संख्या ऑड है तो आखिर में एक जीरो लगाकर उसे इवन बना लेते हैं। फिर सामान्य तरीके से डिविजन करते हैं और जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट पार करके डेसिमल पार्ट का पहला जोड़ा नीचे लाते हैं, उसी समय कोशेंट में भी डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं।
समझ गया, मतलब पेयरिंग का नियम थोड़ा बदलता है और कोशेंट में सही जगह पॉइंट लगाना होता है।
हाँ, जैसे 12.4609 में जब हम 12 का काम करके कोशेंट 3 आएगा, अगला पेयर 46 नीचे उतारेंगे, तभी कोशेंट में भी 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 3 पॉइंट, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, और कभी कभी हमें एग्जैक्ट रूट नहीं चाहिए होता, बस अनुमानित मान, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है, जैसे √2 या √3 की वैल्यू।
उस स्थिति में भी लॉन्ग डिविजन काम आता है। मान लीजिए हमें √2 का मान 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही चाहिए।
हाँ,
तो हम लॉन्ग डिविजन से 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे, जैसे √2 = 1.414।
ठीक है, 1.414 तक निकाला।
अब तीसरे डेसिमल प्लेस को देखिए, क्या है?
4।
इनको एक बढ़ा देते, मतलब 1.42 लिखते।
ये राउंडिंग ऑफ का नियम है, समझ गया। और क्या अनुमान लगाने का कोई और तेज तरीका है बिना लॉन्ग डिविजन के?
हाँ, एस्टिमेशन का एक तरीका है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, पहले अंदाजा लगाइए कि वो किन दो जाने पहचाने परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच आता है।
जैसे मान लीजिए √238 का अनुमान लगाना है।
ठीक है, हम जानते हैं 15² = 225 और 16² = 256।
हाँ, 238 इन दोनों के बीच है, तो √238 15 और 16 के बीच होगा।
बिल्कुल, अब देखिए कि 238 किसके ज्यादा करीब है। 225 के या 256 के?
238 और 225 का अंतर है 13 और 256 और 238 का अंतर है 18, तो ये 225 के ज्यादा करीब है।
सही, क्योंकि 238 225 के ज्यादा करीब है, तो हम कह सकते हैं कि रूट 238 का सबसे करीबी इंटीजर अनुमान 15 होगा।
ये तो काफी आसान और तेज तरीका है रफ आइडिया लगाने के लिए। तो हमने आज चैप्टर 5 की काफी बातें कर ली, स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ शानदार पैटर्न्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, और फिर स्क्वायर रूट्स निकालने के तरीके जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन और वो लॉन्ग डिविजन, साथ ही डेसिमल्स और एस्टिमेशन पर भी बात हुई। काफी कुछ कवर हो गया।
हाँ, ये इस अध्याय के मुख्य बिंदु थे। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को समझने में मददगार रही होगी। ये सिर्फ गणित के सवाल हल करने के टूल्स नहीं है, बल्कि कह सकते हैं संख्याओं की दुनिया को देखने का एक नजरिया भी है।
बिल्कुल, इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल ज्योमेट्री में क्षेत्रफल निकालने से लेकर शायद विज्ञान और इंजीनियरिंग की समस्याओं तक में हो सकता है।
जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए।
हाँ।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ अनजाने में इस्तेमाल होता होगा? शायद GPS में दूरियां नापने में, या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में शेप्स बनाने में। सोचिएगा, गणित हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, बस नजर दौड़ाने की जरूरत है।
बेहतरीन विचार। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।